Surgióme.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
नौवां बेंगलुरु स्पेस एक्सपो BSX 2026 7 से 9 दिसंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है, जिसका थीम है हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस इनोवेशन पॉलिसी एंड ग्रोथ। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 में कहा कि नासा ने आधिकारिक तौर पर इसरो को चंद्रमा आधार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
इंडिया इज अ प्राउड सिग्नेटरी ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड्स एंड नासा हैज ऑफिशियली इनवाइटेड इसरो टू जॉइन अस इन द मून बेस प्रोग्राम। मेक नो मिस्टेक, वी आर गोइंग बैक टू द मून एंड वी वांट इंडिया बाय आवर साइड ऑन द लूनर सर्फेस। द मून मे बी आवर डेस्टिनेशन, but the engine of this journey is ground level innovation right here in our labs, startups and commercial markets. India's bold space sector reforms ignited a commercial awakening.
Isme jo charcha ho rahi hai usme space economy ke bare mein baat ho rahi hai, vartman aakar aur lakshya BSX ke anusar bharat ka space sector lagbhag 8.4 billion ka hai aur vaishvik space economy mein iski hissedari kareeb 2-3% है और 2033 तक इसे लगभग $44 बिलियन तक ले जाने और करीब 11 बिलियन एक्सपोर्ट्स हासिल करने का लक्ष्य माना गया है। पर प्रश्न जनरल भट्ट यहाँ पे ये है कि क्या भारत 8-10% ग्लोबल स्पेस मार्केट शेयर हासिल कर सकता है?
मेरा जवाब ये होगा कि 8-10 नहीं हो सके, और अगर सब चीजें ठीक से चलेंगी तो ये 10 से ज्यादा भी होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आगे आ रही हैं रॉकेट लॉन्च में, सैटेलाइट्स में और एप्लीकेशंस में, मेरा तो ये विश्वास है कि ये 10% फीसदी से भी ज्यादा बढ़ेगा।
हम इसरो की बात यहां पे करते हैं, इसरो और इंडस्ट्री ने साथ मिलकर, अभी आपने प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की, इसरो को R&D स्ट्रेटेजिक मिशन और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का भी नेतृत्व हासिल है, जबकि रूटीन मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल एक्टिविटी में प्राइवेट इंडस्ट्री की भूमिका बढ़ रही है। आपने भी अभी चर्चा की कि उसकी भूमिका और भी अधिक होने वाली है। प्राइवेट पार्टनरशिप को आप कैसे देखते हैं इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में?
भारत की अगर स्पेस का इतिहास देखा जाए तो जब से इसरो बना और तब से 2020 तक सिर्फ इसरो ही सब स्पेस एक्टिविटीज में भारत में लीड कर रहा था, चाहे वो लॉन्च व्हीकल बनाना हो, चाहे वो सैटेलाइट्स करना हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, ये इसरो के ही द्वारा किया जाता था। हाँ, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अपने सब असेंबली और कंपोनेंट्स के वेंडर्स के तरीके से इस्तेमाल करते थे, पर प्राइवेट सेक्टर इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता था। 2020 में हमारी सरकार ने ये निश्चय लिया कि अब समय आ गया है जबकि प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस में सारी एक्टिविटीज करने की अनुमति दी जाए, और इस डिक्लेरेशन के बाद 2023 में नई स्पेस पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कि इसरो का एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इन स्पेस, NSIL, जिसका मतलब है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी कि इसरो की पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब उनका कमर्शियल काम करने के लिए, और साथ ही नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, जिसका मतलब प्राइवेट सेक्टर, इन सब के रोल काम को डिफाइन किया गया है। और उसमें ये कहा गया कि इसरो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लैनेटरी साइंस यानी कि मंगलयान, शुक्रयान और ऐसे मिशन, गगनयान जैसी गगन यात्रियों को भेजना, अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, चांद में जाना, ऐसी कार्रवाइयां इसरो करेगा, और जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई है, जो काबिलियत जिनको कमर्शियल करना है, उनको प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। तो जैसे कि इसरो के पुराने चेयरमैन के शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो उनका कहना था कि स्पेस जो कि सिर्फ इसरो लीड करता था, अब स्पेस एंटरप्राइज बन गया है, और स्पेस एंटरप्राइज में कौन कौन है, लीड में इसरो, साथ में एकेडमिया, साथ में स्टार्टअप्स, साथ में प्राइवेट सेक्टर, ये सब मिलकर अब आगे के स्पेस को आगे बढ़ाएंगे। और ये एक जरूरी भी इसलिए हो गया क्योंकि सैटेलाइट्स बनाने की जरूरत, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने की जरूरत, सिर्फ इसरो में न सीमित करके इसको और बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर को पूरा खोल दिया गया है।
जनरल भट्ट, 2026 तक भारत में लगभग 400 से अधिक प्राइवेट स्पेस कंपनीज और स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम विकसित हो चुका है। लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट की बात आपने की, प्रोपल्शन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें इनमें समावेशित हैं। तो लॉन्च इकोनॉमी की अभी आपने भी चर्चा की, लॉन्च इकोनॉमी की आपने बात की, और एक तरह से भारत को लॉन्च प्रोवाइडर से भी आगे जाना होगा लॉन्च इकोनॉमी बनने के लिए। पीएसएलवी, LVM3 की विश्वसनीयता भारत की ताकत है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगला अवसर लो कॉस्ट लॉन्च, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉल लॉन्च व्हीकल्स और हाई लॉन्च, इसके इकोसिस्टम में है। कैसे देखते हैं? लक्ष्य केवल दूसरे देशों को सैटेलाइट लॉन्च करना ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्पेस लॉजिस्टिक्स मार्केट में भी बड़ा हिस्सा हासिल करना होना चाहिए। कैसे देखते हैं इसे आप?
तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि लॉन्च इकोनॉमी नहीं, मतलब इतनी अहम नहीं है। क्यों अहम नहीं है? क्योंकि जो पूरा ओवरऑल स्पेस सेक्टर की इकोनॉमी में है, उसमें लॉन्च की परसेंटेज बहुत ही कम है। यानी कि लॉन्च से जो पैसा मिलता है वो और चीजों के वनस्पत, एप्लीकेशंस के वनस्पत काफी कम है। ज्यादा पैसा, ज्यादा कमाई सैटेलाइट से डेटा जो आता है उसकी एप्लीकेशंस में है, न कि लॉन्च व्हीकल में। पर हाँ, अगर किसी भी देश को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा बनना है तो उनके पास लॉन्च की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और हम गर्व से कह सकते हैं कि इसरो के होने की वजह से हमारे पास PSLV, SSLV और LVM3 होने के कारण ये काबिलियत है। पर एक चीज और हुई है दुनिया में, और वो है रीयूजेबल रॉकेट्स। आज के दिन में रीयूजेबल रॉकेट्स ने स्पेस लॉन्च की कीमत को काफी कम कर दिया है। और इसमें एक दो कंपनियां आई हैं दुनिया में, जिसमें से लीड कंपनी SpaceX है, और ज्यादातर दुनिया की सैटेलाइट आज उनसे लॉन्च हो रही है। तो फ्यूचर में अगर हमको लॉन्च में ग्लोबल पार्टनर बनना है तो हमको सिर्फ LVM3 तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हमको रीयूजेबल रॉकेट बनाने। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये ऐसा भी होगा।
अभी आपने वो लॉन्च इकोनॉमी की आपने बात की कि सिर्फ लॉन्च इकोनॉमी तक ही नहीं सीमित रहना है, इससे आगे भी बढ़ना है। तो भारत की अगली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रॉकेट्स होंगे या सैटेलाइट्स होंगे या स्पेस डेटा आधारित सर्विसेज होंगे, इसके बारे में इसरो या ऐसी एजेंसीज और क्या आगे काम कर रही हैं, आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे इस पे?
देखिए, अगर आज के दिन में भी ग्लोबल मार्केट देखा जाए पूरा, कि भाई जितना भी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है उसमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? सबसे ज्यादा पैसा है सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके अलावा लोकेशन बेस्ड सर्विसेज पर और सैटेलाइट्स के डेटा के एप्लीकेशंस, जो कि एग्रीकल्चर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, हर एक अनेक जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास एक फायदा है कि जैसे कि जब IT रेवोल्यूशन हुआ तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी स्टेम एजुकेशन में इतने स्टूडेंट्स हैं कि हम उस बूम का इस्तेमाल कर पाए। तो इसी प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है कि एप्लीकेशंस ही भारत की स्ट्रेंथ होगी। ये जरूरी है कि लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट बनाने की काबिलियत तो होनी होनी है, पर जहां पैसा है, जहां पर ज्यादा ग्लोबल मार्केट में हम कॉम्पिटेटिव होंगे, वो है मल्टीपल एप्लीकेशंस।
अभी आपने थोड़ी देर पहले गगनयान, चंद्रयान की बात की, तो गगनयान के आगे स्पेस स्टेशंस, लूनर एक्सप्लोरेशन और डीप स्पेस मिशंस भारत के लिए केवल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स ही नहीं बल्कि नई इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज के तौर पर भी उभर कर आई हैं, और हाईटेक सप्लाई चेन्स के भी काफी अवसर हैं यहाँ पे। अभी ये BSX में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी प्रमुख विषय बनाया गया है, इस विषय में कुछ कहना
जी,
चाहेंगे आप?
देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, एक तो बहुत ही एक अच्छी चीज हुई है कि भारत की सरकार ने और इसरो ने ये डिफाइन किया है कि 2040 तक हमने क्या करना है। और उसमें सबसे पहले अपने गगनयात्री, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेजना है, जिसकी शुरुआत इस साल के आखिरी में होगी, जब हो सकता है पहला रोबो गगनयात्री जाए। दो तीन अनक्रूड फ्लाइट होने के बाद में क्रूड फ्लाइट जाएंगी, और हो सकता है अगले साल के आखिर और या 2028 तक हमारा पहला गगनयात्री स्पेस में होगा। पर बहुत अहम है कि साथ ही भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2028 और 2035 के बीच में बनेगा, और 2040 में भारत से लॉन्च हुई हुई लॉन्च व्हीकल्स में पहला इंडियन चांद पे जाएगा। नाउ ये सब जो मिशंस हैं, ये सिर्फ साइंटिफिक मिशंस नहीं है, पूरी दुनिया में ये फ्यूचर में अगर देखा जाता है स्पेस का, और ये कहा जाता है कि अगले 30, 40, 50 साल में स्पेस क्या होगा, तो जैसे आप कह रहे हैं अर्थ की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्पेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, वो होंगी एस्ट्रॉइड माइनिंग की, वो होंगी पावर एनर्जी को नीचे, सोलर एनर्जी को नीचे अर्थ में भेजने के लिए, डाटा सेंटर्स के स्पेस में बनने के लिए। तो बहुत सी जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज हैं, अर्थ के लिए जो एक्टिविटीज हैं, वो स्पेस में की जाएंगी, और उसको करने के लिए क्षमताएं अभी से शुरू हो जाएंगी। और उसी में पहला गगनयात्री जाना है, अंतरिक्ष स्टेशन बनना है और चांद में जाना है, उसके आगे चांद में कॉलोनी और उससे आगे मंगल पे जाना। ये सब एक्टिविटीज सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए नहीं, बल्कि नई फ्यूचर की इकोनॉमी का हिस्सा रहने के लिए। और जैसे इसरो ने हमें आज हाई टेबल पे रखा हुआ है स्पेस के, हम कुछ ही देशों में से हैं जो इन्होंने साउथ पोल पर चांद के लैंड किया है,
जी
तो ये काबिलियत इसरो हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा, बनाता रहेगा।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश को अपनी सॉवरेनिटी बरकरार रखने और उसे और मजबूत करने का पूरा हक है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल पार्टनरशिप की अगर
जी
हम बात करें जनरल भट्ट, तो भारत को यूएस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों के साथ टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन्स और ज्वाइंट मिशन में सहयोग करते हुए देखा जा सकता है। हाल में ही कई देशों के साथ हमने ऐसे पैक्ट और ट्रीटी और डील भी किए हैं, और BSX 2026 में यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ डेडिकेटेड इंटरनेशनल सेशंस भी रखे गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे?
देखिए, स्पेस की एक डोमेन है दुनिया में जहां की हमेशा ही ग्लोबल कोऑपरेशन रहा है। और अगर हम अपने स्पेस के इतिहास को देखें, तो जब पहला स्पेस रॉकेट हिंदुस्तान ने भेजा था, वो स्पेस रॉकेट हमको अमेरिका ने दिया था, उसको थुम्बा तक पहुंचाने की काम एक रशियन हेलीकॉप्टर ने किया था, और उसके ऊपर जो रॉकेट साउंडिंग का जो वो था, वो फ्रांस से आया था।
जी
तो हमारी भारत की फ्रांस के साथ में, जापान के साथ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में और अमेरिका के साथ में और साथ में रशिया के साथ में भी हमेशा स्पेस में कॉपरेशन रहा है। और दूसरा, आज के दिन में जैसे BSX में इतने विदेशी देश इसलिए आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ क्षमता और काबिलियत है, यहाँ ऐसे को प्रोडक्शंस, ऐसे को फ्यूचर के लिए ऐसे चीजें, कार्रवाइयां हमारे स्टार्टअप्स और हमारी कंपनियों के साथ कर सकती हैं जिससे कि ग्लोबल पार्टनरशिप्स बन पाए। और इसरो ने पहले से शुरू किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब किसी देश में जाते हैं तो स्पेस रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा होता है, और ये कॉपरेशन दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है।
जनरल भट्ट, अभी आपने काफी उभरते हुए क्षेत्रों की बात की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि कोई भी आज के डेट में स्पेस वो अनछुआ नहीं रह सकता है और होना भी नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, या कुछ और भी ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं इसकी बात करें, तो इसमें स्पेस मिशन या स्पेस इकोनॉमी या हमारा जो प्रोग्राम है स्पेस का, वो कैसे किस हद तक मदद कर सकता है?
देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जिसने सबसे बड़ा चेंज लाया वो है मिनिएचराइजेशन। सैटेलाइट जो कि एक बड़ी कोठी के बराबर होती थी, छोटी इतनी एक फ्रिज से भी छोटी हो जाती है,
जी
जो कि एक बहुत मिनिएचराइजेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है। साथ ही AI और ML का इस्तेमाल काफी आगे तक है।
जनरल भट्ट, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में